जन्म और मरण की माला में वो पड़े हुए हैं, इसे निकल नहीं पाते। इसलिए इन पर कैसे कृपा की जाए, ये लोग संसार से मुक्त होकर के हमारे चरणों की सेवा में तत्पर हो सके। इसलिए भगवान अवतरित होकर के बड़ी मनोहारिणी लीलाओं की अवतारणा कराते हैं। आप लोगों ने सुना जय रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और कैसा उन्होंने जीवन में सुंदर सुंदर लीलाओं को की। जनकपुर में वो कैसे गए, सीता जी का स्वयंवर हुआ, उन्होंने राम के गले में जयमाला दी, विवाह हुआ, अयोध्या में लौटे। जिस दिन रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना था उस दिन उनका वनगमन हुआ, सीता और लक्ष्मण को लेकर के वहां से चले। अयोध्यावासी विलाप करते करते उनके पीछे पीछे चले। निषाद राज के वहां पर पहुंचकर सोते हुए सबको छोड़कर फिर तीनों किस प्रकार से पहुंचे चित्रकूट में। चित्रकूट में राम को मनाने के लिए भारत आए, उनकी मैया भी आई, कैकेयी भी आई, सुमित्रा जी भी आई, कौशल्या जी भी आए, वशिष्ठ जी भी आए, सब पूर्ववासी लोग आए। वहां आश्रम के आसपास के जितने भी ऋषि इत्यादि थे सभी लोग आए, हो सकता है कि वाल्मीकि भी आए हों। महाराज जनक भी वहां पर उपस्थित हुए। कैकेयी ने राम से कहा, बेटा मैंने अन्याय किया, मैंने जो वर मांगा था अपने पति से, राम का वनगमन और भरत का राज्य मैंने ही तो मांगा था, इसलिए मैं लौटा लेती हूं, अब तुम अयोध्या को लौट चलो और तुम ही राज्य करो। मैं कहा, तुमने तो अकेले नहीं मांगा था, पिताजी भी थे ना आधा, इसलिए पिताजी के वचन की रक्षा के लिए अभी मेरा अयोध्या जाना उचित नहीं। सूर्यवंश की लोगों की यह रीति है, प्राण जाय बरु वचन न जाय, मेरे प्राण चले जाएंगे तभी पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए मुझे वहां जाना है, नहीं माने। भरत जी रो रो करके कौशल्या से कहा, जी मैया तुझसे अभी तक कुछ नहीं मांगा, ये मांगता हूं कि राम को लौटा लो, आदेश दे दो, चल पड़े। उन्होंने भी मना कर दिया। वशिष्ठ से कहा, जी गुरु जी आपकी बात को मान करके जरूर ये चलेंगे। वशिष्ठ जी ने भी इनकार कर दिया। महाराज जनक से को संदेश भेजा गया, उन्होंने किसी तरह से महाराज जनक को की पत्नी सुनैना जी को कहा, उनके चरणों में गिर कर बोले, मैया ये कल ये विवाद का निपटारा होना है, रामचंद्र जी वहां जाएंगे कि नहीं, तुम मेरी तरफ से महाराज जनक को कहना कि वो धर्म पर विचार करके ये निश्चित करें कि रामचंद्र जी अयोध्या को लौट जाए। उन्होंने कहा, अच्छा मैं संदेश दे दूँ। उन्होंने उनसे कहा भी, बड़ी भारी विराट सभा वैसी, एक तरफ में भरत शत्रुघ्न और सारे अयोध्यावासी, दूसरी तरफ में राम सीता लक्ष्मण, तीसरी तरफ में वहां के जितने ऋषि महर्षि सब बैठे, और चौथी तरफ में महाराज जनक बैठे। जनक जी ने अपने इष्टदेव का प्रणाम किया, इष्टदेव को, और प्रणाम करके बोलो, ये देखो भाई मैं सब प्रकार से विचार करके देखा, भरत का प्रेम अगाध है, प्रेम कोई रीति नीति नहीं जानता, इसलिए भरत की जीत है, सब लोग बड़े उल्लसित हुए, भरत जी का आनंद बहुत बढ़ गया। उन्होंने कहा अब तो राम को लेकर के चलना है हमको अयोध्या में, बड़े उल्लसित हुए जब भरत जी की जीत है। किंतु उन्होंने कहा कि देखो एक बात और विचार करो, प्रेम का तत्व समझो। तुम प्रेमी हो, राम प्रेमिक हैं, तुम्हारे इष्ट हैं, राम को किस विषय में सुख है इस चीज को समझो, और जैसा वो कहता है वैसा तुम्हें पालन करना चाहिए। ये तो प्रेम की रीति है, उसकी भी एक नीति है। तुम्हारे प्रेम रूपी अगाध समुद्र में राम की मर्यादा भले ही डूब गई हो, यह बात ठीक है, और तुम्हारे इच्छानुरूप ही राम को करना चाहिए, किंतु उनसे पूछो जो उनको किसमें सुखी है वो हो सकते हैं, उनको किसमें प्रीति है वो क्या चाहते हैं। उन्होंने राम को कहा भैया अब मैं समझा, अभी तक नहीं समझता था। प्रभु किसमें प्रसन्न रहे हो, प्रसन्न हो ये भक्त को देखना चाहिए, और अपनी प्रसन्नता चाहता है तो वो भक्ति नहीं हुई, वो प्रेम प्रेम नहीं है। इसलिए आज मैं प्रेम का तत्व सोचा, अभी तक मैं अपनी ओर से देख रहा था, अब मैं देखता हूं कि आपको किस चीज में प्रसन्नता हो वही चीज हमको करनी चाहिए। अब बतलाइए मेरे लिए क्या आदेश है, आप अयोध्या चलने में प्रसन्न हैं या किस काम में प्रसन्न। राम ने कहा जी भाई वो तो जनक जी ने ये तो फैसला कर दिया है, मैं तुम्हारे प्रेम में पराजित हो गया, हमें पराजित होने के कारण अयोध्या का राज्यभार मैं ले लेता हूं। हमें राम अयोध्या का पति हूं यह बात ठीक है, मैंने राज्य ले लिया, किंतु यह राज्यभार 14 वर्ष के लिए, इसकी व्यवस्था तुम करना सेवक होकर के, इसमें मैं प्रसन्न हूं। इसलिए 14 वर्ष तक मैं पिता का आदेश मांग करने के लिए पालन करने के लिए वन में जा रहा हूं, किंतु तुम हमारा सेवक होकर के हमारी प्रसन्नता के लिए इस राज्य की तुम रक्षा करना, देख सुन करना। बस रामचंद्र जी के पादुका को लेकर के अपने सिर पर, और वो लौट गए नंदी गांव में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में दंडकारण्य में राम पहुंचे, वहां सीता जी की चोरी हुई, लंका में गई, युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में रावण सा वंश मारा गया, मरने के बाद में राम सीता लक्ष्मण जी अयोध्यापुरी में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में 11,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य किया। अंतिम दिनों में उनका CID खौफिया वो राज्य में घूम करके राम को राज्य का संवाद देता था। उसने आकर के कहा कि आज एक विचित्र बात मैंने सुनी, एक धोबी अपने पत्नी को पैरों से ठोकर मार करके बोला हमारे घर से तू निकल जा, अभी शाम हो गई रात हो गई, तुम अभी तक कहां थी, मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, मैं ऐसी स्त्री को नहीं रख सकता जो मनमानी स्वतंत्र रूप में चारों तरफ में घूमती रहे। राम को देख करके राम ने विचार किया, प्रजाओं में फुसफुसाहट हो रही है मेरे चरित्र के बारे में, सीता जी के चरित्र के बारे में, इन्हें उन्होंने छल कर लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी को वन में भेज दिया। राम ने कहा लक्ष्मण जी से भैया लक्ष्मण सीता जी से कहो कि वो वनवासी की स्त्रियों को कपड़े लत्ते देना चाहती हैं, आभूषण बांटना चाहती थी, उनसे कहना कि वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में जितने कपड़े हों मूल्यवान सोना के अलंकार हों वो लेकर ऋषि पत्नियों को लेकर के बांट आ सकती हैं आश्रम में जाकर। इस बहाने से कपड़ों की और आभूषण की गठरी बांधकर उनके साथ में दे दी गई। लक्ष्मण जी इस विषय को जानते थे। जब वो गंगा पार पर पहुंचे जहां पर वाल्मीकि जी की कुटी थी, रोने लगे जब उनको छोड़ना हुआ तो रामचंद्र जी ने जीवन भर के लिए उनको त्याग कर दिया। इसलिए लक्ष्मण जी रोने लगे। भाभी ने पूछा, देवर तुम किस लिए रो रहे? अरे मैं भी तो राम ही के निकट रह उनकी सेवा करती हूँ आर्य पुत्र की, मैं तो रो रही ही, एक दो दिन के बाद में फिर लौट जाएंगे। लक्ष्मण जी का ने कहा, भाभी ऐसी बात नहीं, उन्होंने सारे जीवन के लिए तुम्हें त्याग कर दिया है। बस सुनते ही बस मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद में नौका से उनको उस पार उतार कर गठरी और सब कपड़े वहीं पर रख दिए। रोते बिल बिल्लाते नौका से और लौट आए। थोड़ी देर के बाद में जब उनकी आंख खुली, मूर्छा जब दूर हुई तो देखा जी लक्ष्मण भी नहीं है, गठरी पड़ी है अलंकारों की और वस्त्रों की। बड़े जोर से रोने लगी, आर्य पुत्र राम के लिए कहकर। इतनी जोर से रोने लगी कि आसपास के पशु पक्षी भी रोने लगे। वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम निकट था, वह वहां से आए। देखा जैसे ये तो वही सीता जी हैं। बस उनके सिर पर अपने हाथ रख करके बोले जी, बेटी तू हमारे आश्रम में चलो, मैं तुम्हारा भरण पोषण और सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपने आश्रम में ले आए। सीता जी वहां पर रोती कलपती जैसे वहां रहने लगी। कुछ दिनों के बाद में आश्रम में ही लवकुश का जन्म हुआ। उनको शिक्षा भी देने लगी। और उधर राम इनके विरह में तड़पने लगे। सीता जी जहां वन में रह करके कुछ के आसन पर सोती हैं, थोड़े से फूल कंद इत्यादि पर जीवन निर्वाह करती हैं, राम राजभवन में समस्त भोगों के चीजों को उन्होंने अल्प दूर कर दिया। और दूर करके चटाई पर केवल सोते, तकिया गलीचा और ये सब चीजें छोड़ दी। नौकर चाकरों की सेवा भी छोड़ दी। वो वन में तड़पती रही और ये राजभवन में तड़पते। उनको वाल्मीकि जी का संग था और लवकुश की सेवा प्राप्त थी। गोदी में लेकर के वो थोड़ा सा भूल जाती थी और राम को कोई सी चीज का सहारा नहीं। वो अकेले ही बिलाप करते, रात भर नींद नहीं आती। थोड़ी देर दिनों के बाद में रामचंद्र जी से विरह सज्ज नहीं हुआ। उन्हें सोचा जी कुछ अश्वमेध यज्ञ इत्यादि कराएं, उसके द्वारा मेरा मन बहल जाएगा। वशिष्ठ से उन्होंने कहा, गुरु जी मैं यज्ञ करना चाहता हूं। तुम यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हो। क्यों गुरु जी? इसलिए कि तुम्हारी पत्नी को तुमने त्याग कर दिया है। अकेला पति पत्नी को त्याग करके नहीं कर सकता है यज्ञ, उसका अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा जी हमको तो यज्ञ करना है, आपको किसी प्रकार से कराना है तो एक बात करो, तुम्हारे पिताजी को तो 360 विवाह हुए थे, तो तुम एक और शादी कर लो नई। विश्व में ऐसी कौन सी सुंदरी श्रेष्ठ है जो आपसे शादी नहीं करना चाहेगी? जनकपुर में ही आपको मिल जाएंगी बहुत सी। उन्होंने कहा मैं शादी सीता के अतिरिक्त और किसी से आप नहीं, नहीं हमको करना है, फिर भी हमको यज्ञ कराइए। उन्होंने कहा जो तब एक बात करो, सीता जी की मूर्ति स्थापना कर और उसी को बाएं में रख करके गांठ बांध करके यज्ञ करो। हाँ ये हो सकता। इसलिए सीता जी की मूर्ति सुंदर भव्य बनाई गई जो सीता जी के देखने के समान ही हो, और रामचंद्र जी अपने हाथों से प्रतिष्ठा करते हैं, वो जीवित हो उठी। ऐसी सुंदर मूर्ति थी, मानो बोलती है चालती है। लवकुश अपने गुरु जी की आदेश से विश्व में सर्वत्र ही रामलीला का गान करते हैं, जिन्होंने राम जी के समय में ही, अवतार के समय में ही वाल्मीकि रामायण लिखा था। सुंदर पद अनुष्टुप छंदों में उसको ललित स्वर में गाया जा सकता है। विशेष करके वीणा यंत्र पर उसको बड़ी सुंदर से गाया जाता है। जहां पर गाने वाले अत्यंत सुकोमल 7-8 वर्ष के बच्चे हों, मैंने कूश लव और कूश राम ही का सारा ऐश्वर्य सिमेट करके और उनका सौंदर्य सिमेट करके लव और कुश के रूप में ठीक अधिकल वैसे ही देखने में गला अद्भुत सुंदर कोयल को भी मात करने वाला बिना जंत्र में मिला करके गान कर रहे थे। गान करते 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 मध्य अवकाश में जब यज्ञ का बीच का भाग आया, यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद में सभी लोग बैठ करके हरि कथा को सुन रहे थे, पौराणिक कथाओं को सुन रहे थे। लवकुश आकर के रामायण का गान करने उनके गले से सुन करके, और सुंदर सुंदर छोटे बच्चे सन्यासी जैसे केस को यहाँ पर बांध रखा, बीड़ा यंत्र लेकर के अद्भुत सुंदर कुमार अभी पौगंड उम्र से किशोर में अभी जा रहे हैं। सभी लोग देख करके ही रूप देख करके ही मुग्ध हो गए, और जब गान करने लगे रामायण का, सीता जी का स्वयंवर वनगमन और सब जब करे, सभी लोग रोने लग गए। जब 2-3 सर्ग सुनाया था सभी लोग मुग्ध हो गए, राम की आंखों से आंसू की धारा गिरने लग गई, वहां पर उपस्थित कौशल्या मैया रोने लग गई, कई सभी लोग वशिष्ठ तक रोने लगे, लक्ष्मण जी कितनी बुरी हाल हो गई, सभी लोग तन्मय होकर के सुन रहे हैं और रो रहे हैं। राम ने, जबकि वो कथा समाप्त हुई, राम ने कहा लक्ष्मण से, भैया जरा पूछो तो इसके पिता माता का क्या परिचय है, और इनको पुरस्कार के स्वरूप में खजाने से सोने के थाल में हीरे और मोती भरकर इनको दिया जाए। सबके व्यवस्था करके लक्ष्मण जी दोनों बालकों के पास में पहुंचे, बोले जे बेटे रामचंद्र जी राजा इस देश के, तुम्हारे ऊपर मैं अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछ रहे हैं, ये तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तुम्हारा किस वंश में तुम आए हो। सुनिए, आप जैसा बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर सकता है, मुझे इसका भान नहीं था। शास्त्रज्ञ लोग ब्रह्मचारी का माता पिता का नाम और वंश का नाम नहीं पूछते, वे उनके गुरु का नाम परिचय पूछते हैं, और तुम हमारे वंश का नाम परिचय पूछ रहे हो, ये तो शास्त्र के विरुद्ध है। हमसे पूछो हमारे गुरु जी का नाम वाल्मीकि जी है, यही हमारा परिचय है, प्रथम परिचय और अंतिम परिचय यही है, हमारे वो गुरु हैं, इसके अतिरिक्त मैं और कोई परिचय नहीं जानता। लक्ष्मण जी सुन करके मौन हो गए, कोई उत्तर देने का कुछ रहा न पूछने का। फिर उन्होंने सोने की थाल में भरे हुए हीरे मोतियों को उनके सामने दिया, देते ही उन्होंने इनकार कर दिया, मुझे क्या काम है इस सोने से और इस द्रव्य से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु के आश्रम में रहता हूं, केले अमरूद आम लीची बेर कैंक ये सब पड़े हुए हैं, हम लोग का जीवन का निर्वाह उसी से हो जाता है, इसे रुपए की क्या जरूरत है, कपड़े के लिए केले के पत्रों के छिलके हम पहन लेते हैं, हमको क्या जरूरत है, लोटे इत्यादि की और थाल की क्या जरूरत है, जमुना में गंगा में पानी ऐसे उठा करके अंजलि से पी लेते हैं, हाथ में करपात्री जैसा भोजन कर लेते हैं, आकाश के नीचे ही सो जाते हैं वृक्षों के नीचे, हमें इस सबसे कोई प्रयोजन नहीं, ये तुम अपने खजाने में रखो, इसे तुम्हारा ही कुछ उपकार होगा, हमारे लिए इसकी कोई भी आवश्यकता। सभी लोग यह देख करके सुन करके और भी चकित हो गए, और दिन भर रात भर इन बालकों की ही बातें चर्चा करते रहे। इधर लवकुश लौटे अपनी मैया के पास में, मैया ने कहा जी बेटा इतना तुम्हें विलंब क्यों आज हो गया, एक को दाहिने जंघे पर लव को और कुश को बाएं जंघे पर बैठा करके बड़े प्रेम से उनका मस्तक सूंघ रही है और सिर पर हाथ फेर रही है, बेटे आज कैसे विलंब हो गया। मैया, आज तो हम लोग एक किसी राजा के दरबार में गए और वहां पर हमने रामायण की कथा सुनाई, वाल्मीकि जी के इसको सुनाया हमने, सभी लोग बड़े मुग्ध होकर के सुन रहे थे। मैया मैंने एक चीज देखी, हमने ये देखा कि पास ही में यज्ञशाला में किसी एक सोने की मूर्ति को देखा, जब मैंने उस मूर्ति को देखा तो तेरी याद आ गई। तुम्हारे रूप में उस मूर्ति के रूप में कोई भी अंतर नहीं था, तुम बोल रही हो और वो बोलती नहीं, बस इतना ही अंतर, किंतु बाकी सब कुछ एक समान देखा। ये सुनते ही वो तो सुना रहे थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे पिताजी का, वो एकदम रोने लग गई। लौ कुश ने कहा, भैया तू रोती क्यों है? और अपने इस दोपट्टे से उनका आंखों का आंसू पोंछने लगे। वाल्मीकि जी वही सब दृश्य देख रहे थे, वे भी द्रवित हो गए। सीता जी समझ रही हैं, राम ने मुझे नहीं छोड़ा, ये राजा ने अपनी रानी को छोड़ा है, मुझे नहीं। यदि छोड़ते तो हमारी मूर्ति बना करके उसमें गांठ बांध करके ये नहीं ऐसा यज्ञ करते, इसलिए हमको नहीं छोड़ा है, छोड़ा है रानी को छोड़ा है। दूसरे दिन बच्चों ने फिर से कथा कही, उसमें और भी आगे की बातें कही, सभी लोग और भी स्तब्ध हो गए और मुग्ध हो गए। राम ने वाल्मीकि जी को बुलाया, महर्षि वाल्मीकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके आश्रम में ही हमारी प्रिया सीता जी हैं, क्या आप उनको उपस्थित कर सकते हैं मेरी सभा में, मेरे सामने? उन्होंने कहा, जैसे आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही करेंगे। आश्रम में गए, सीता जी से पूछा, बेटी राम का आदेश है, मैं तुम्हें उस उनकी राजसभा में ले चलूं, चलेगी? तुम्हारा क्या विचार? उन्होंने कहा, जब मैं तो आपके शरणागत हूं, आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए मैं बाध्य हूं, मेरा अपना कुछ भी स्वतंत्र विचार नहीं। उन्होंने कहा, राम जगत में सर्वस्व है, वह स्वयं भगवान जी हैं और ये लीला ऐसा कर रहे हैं, मेरी समझ से तुम्हारा जाना और उनका आदेश पालन करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम हमारे पीछे पीछे उस राज्यसभा में चलो। वो तैयार हो गई, उन्होंने दोनों बालकों को साथ लेकर वाल्मीकि के पीछे पीछे घूंघट उतार कर नीचे और चल। जब सभा में पहुंची, सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो रहे, अरे ये लौकुश तो ये राम का ही बेटा मालूम पड़ता है, क्योंकि सीता जी के साथ में दिखाई पड़ता है, ये सीता जी हैं और उनके दोनों पत्र उनकी दोनों उंगलियों को पकड़ कर क्या। अब तो आश्चर्य लोगों की सीमा नहीं रही, एक तक देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब राम के सामने सीता जी आई, राम नमी आंखों से अर्थात छल छलाती हुई आंखों से सीता जी को संबोधन करके बोले, सिए मैं जानता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से पवित्र हो, इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है, पहले भी इसका प्रमाण हो चुका है, तभी मैं प्रजाओं को यह आश्वासन देना चाहता हूं, इसलिए तुम अपनी पतिव्रता होने का प्रमाण कुछ दो। सीता जी ने कहा, और भी प्रमाण की जरूरत है? तो ठीक है, मैं प्रमाण दे रही हूं। उन्होंने कहा, हे धरित्री माता, आप मेरी माता हैं, आपके कोख से मैं उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए आप यदि मैं राम के अतिरिक्त तन से मन से वचन से किसी को और अपना नहीं समझा है, तो आप जल्दी से यहां पर आकर के और हमें अपने अंक में ले लीजिए। तीन बार ऐसा कहा और तीसरा बार जैसे उन्होंने कहा, पृथ्वी फटी और उसमें से सुंदर सिंहासन के ऊपर में पृथ्वी माता वहां पर दर्शन दिया और झट से सीता जी को अपने अंक में समेट करके और क्षण मात्र में ही देखते देखते सभा सभी लोगों के और उसी के अंतर में अंतर्हित होकर दी। समस्त सारी सभा हाहाकार कर उठी, राम भी हाहाकार उठे करके उठे, धनुष बाण लेकर के उठे, बोले ये तू मेरी सास है, अभी सीता जी को यदि तुम नहीं लौटाती तो मैं बाणों से तुम्हें विदीर्ण करके खाक कर दूंगा। वाल्मीकि जी ने कहा, जब बस हुआ, इस रूप को दूर कीजिए, सीता जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं साकेत में, ये आगे गई, अब आपके लीला समाप्त होने की, अब ऐसे विक्रम दिखलाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, लोग इन लीलाओं का स्मरण करेंगे उनका हृदय पवित्र हो जाएगा, वे सभी को वहां पर पहुंचेंगे, बैकुंठ में आपके धाम को पहुंचेंगे। इस तरह से रामचंद्र जी ने ऐसी सुंदर लीलाएं की, किंतु इस लीला को भी मात देने के लिए इसे भी ऊपर की कोई लीला है, यही तक समाप्ति नहीं है। इस दिखलाने के लिए चंद्रवंश में, विशेष करके जदु वंश में, जदु महाराज के वंश में, ये कृष्ण जी समस्त माधुर्यों के रसों के आधार कृष्णचंद्र जी प्रकट हुए। इसी से आप समझिए, ये इस रामलीला जो इतना करुणा कर है, करुणापूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो अभी इनसे बहुत श्रेष्ठ रस की दृष्टि से राम की अपेक्षा, नारायण की अपेक्षा कृष्ण का वैशिष्ट्य है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, शुभानंद जी इसका सबका वर्णन करेंगे और सुनाएंगे, नहीं तो उसमें बहुत अंत ये हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, इसलिए अधिक समय नहीं लेकर के दो चार शब्दों में ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। इससे समझो कृष्ण जदुकुल में पैदा हुए, एक ही साथ में गोकुल में, अभी लीला आरंभ नहीं हुई है, एक ही साथ में मथुरा में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण के रूप में अवतरित है, और उसी समय उसी रात में उसी समय में गोकुल में यशोदा मैया के पुत्र के रूप में उनके गर्भ से पैदा हुए हैं और बालकों को जैसी ली जाती। राम जी का ऐसा नहीं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, चतुर्भुज दिखलाया, वो पहले विष्णु था, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, किंतु यशोदा मैया ने स्तुति नहीं की, कोई स्तुति की जरूरत नहीं, हमारा बेटा पैदा हुआ, हम इसका पालन पोषण नहीं करने से ये बच नहीं सकेगा, इसको कहते हैं मधुर भाव। ऐसे शेष हैं कि ब्रज में वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य है सूरदास, कितना मार्मिक वर्णन करते हैं कौशल्या इनके भाव को, यशोदा जी का बात्सल्य का, अपनी वीणा की तान पर कितना सुंदर वर्णन करते हैं, सबको मुग्ध कर देते हैं बात्सल्य के भाव, मूर्ति उसकी खड़ी कर देते हैं, इसलिए सभी लोग उसे मुग्ध होते हैं। यहाँ बस उन्हीं की कविताओं को, उन्हीं के ही सब चीजों को सूरदास के लेकर के कृष्ण के प्रति बात्सल्य भाव रखते हैं, मक्खन को ले लड्डू लेकर के ऐसे चलने वाले कृष्ण को ही अपना आराध्य लोग मानते हैं। किंतु देखो एक ही बात समझो, एक बार किसी वल्लभ संप्रदाय के किसी भक्त से और चैतन्य महाप्रभु के किसी रसिक भक्त से परस्पर भेंट हुई, वल्लभाचार्य जी का यह वात्सल्य रस बहुत ऊंचा है, हम लोग उसका नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, किंतु एक बात से ही विचार कीजिए, यशोदा मैया कृष्ण का कितना लालन पालन करती हैं, इसलिए वल्लभाचार्य जी का भक्त कह रहा है, देखो श्रीनाथ जी में हम कैसा भगवान की सेवा करते हैं, इनकी कृष्ण की सेवा करते हैं, शुद्ध हजारों गायों का दूध का मक्खन बनता है और उसके लड्डू बनते हैं, शुद्ध घी का पूड़ी बनता है और ठाकुर जी को भोग देते हैं, तांबूल की सेवा होती है, हजारों लोग बैठे हुए तांबूल बना रहे हैं, कोई माला बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं और उनकी सेवा करते हैं बाल गोपाल की, इसलिए बाल गोपाल की सेवा सबसे उत्तम है। गौड़ीय वैष्णव ने कहा, बात तो ठीक है, माता का कृष्ण के प्रति खूब वात्सल्य बहुत ऊंचा भाव है, किंतु ये मैया यशोदा की गोदी में सोए हुए हैं, 8-9 रात के बज गए, कृष्ण सोचा कि मैया कब यहां से चली जाए, तो हमको कहीं चलना है, कहां चलना है, बड़े उत्कंठित और सोचा कि मैया अब जाए अब जाए अब जाए, अंत में मैया इनको सुला सुला करके सो करके और जहां अपने भवन में जाती हैं मैया माता इत्यादि को सबको छोड़ करके कुंजों में श्रीमती राधिका जी से मिलने के लिए आतुर होकर के चले गए। उन्होंने कहा लाड प्यार करो, खिलाओ पिलाओ सब करो, किंतु वो हमारे राधा जी का ही गुलाम है, जगत का ही। राधा जी के लिए तरसता है। स्मर करल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद फल्लम उदारम। वहां जाकर के, यहां तो जसोदा मैया की गोदी में बड़ा लाड प्यार खा रहा था और सोचा जो जल्दी से मैया हट जाए, वो वहां गया और राधा जी ने वहां पर मान किया, ये देरी क्यों किया, और इनसे बोल नहीं रही और कह जी हमारे कुंज से निकल जाओ, और वहां पर अपनी बंसी को समर्पित कर दिया कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में, और कहती अपनी मान की भिक्षा हमें दे दो प्यारी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, भीख मैं मांगता हूं, तुम अपने मान को हमारे अंचल में भीख दे दो। तो बताओ तो कौन श्रेष्ठ हुआ, ये चैतन्य महाप्रभु के और उनके परिकरों का भाव है, इसलिए इससे सर्वोत्तम और कोई चीज नहीं हो सकता। इसी भाव को दिखलाने के लिए ही स्वयं भगवान कृष्ण इस ब्रज में आए, और सब गौण चीजें हैं, धर्म की रक्षा करना, जो धर्म का प्रवर्तन करना, और सब जो लीलाएं दिखलाई उन सब में गोपियों के भावों की सर्वोत्तृष्ट श्रीमद भागवत में दिखलाई गई। कृष्ण बस इसी रस का आस्वादन करने के लिए आए, जब यहां पर पूरा नहीं हुआ तो नवद्वीप में चले गए और राधा जी के भाव को चोरी कर रसराज कृष्ण के इन भावों को उन्होंने आस्वादन किया था, इसी का हम लोग पीछे से विवेचन करेंगे। आज मैं यहीं पर वक्तव्य अपना समाप्त करता हूँ। गौर प्रेमानंदे एक
यम प्रभ्रजन्तमन्ते समपेशकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तरया स्वभाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोभेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है। भगवान की कृपा और गुरु कृपा से निर्विघ्न भागवत कथा चल रही है। श्रद्धालु लोग कथाओं का भी श्रवण कर रहे हैं, किंतु एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कथाओं को सुनकर ऐसे ही आचरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। तब प्रसन्ना हुआ कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्होंने अर्जुन को जो कहा गीता में, उन्होंने अपनी बुद्धि का कोई भी प्रयोग न कर जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने कहा किया, समझने की चेष्टा की। उसी तरह से भागवत में जो कहा गया है, कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं उनको निर्विवाद रूप में किंतु समझ कर करने की चेष्टा हमको करनी चाहिए, तब तो भागवत का श्रवण हुआ। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भी भागवत का श्रवण करने का फल धन पुत्र स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है मुक्ति, किंतु ब्रज वाला जो फल है वो नहीं मिलेगा। कृष्ण ने मैया से पूछा, मैया आज पूरी पकवान किस लिए बन गई, आज मेरा जन्मदिवस है मुझे खिलाएगी, मेरे लिए बन रहा है। मैया ने कहा मुझे समय नहीं, जल्दी जाओ बाबा के पास, हमारे पास समय जाओ। उनका मन खराब हो गया, वो पिताजी के पास ले गए, पिताजी के गोदी में बैठ गए और अपने हाथों से उनकी छोटी पकड़ करके बोले, पिताजी ये मैया आज बड़े व्यस्त होकर के मालपुआ इत्यादि बना रही है, पकवान बना रही है, आज मेरा जन्मदिवस तो नहीं है, आज सब लोग आएंगे उपहार लेकर के मुझे खिलाएंगे, मैया भी मुझे खिलाने के लिए ये सब चीजें बना रही है, ये नहीं बचाई, इसलिए आज इंद्र की पूजा होनी है, आज हर घर में
सभी तैयारियां कर रहे हैं। गोप गोपियां आज गोवर्धन की पूजा होगी, इंद्र की पूजा होगी। पिताजी क्यों इंद्र की पूजा होगी? वो हमारा क्या उपकार करते हैं? वर्षा देते हैं, घासें होती हैं, गायें खाती हैं, उससे दूध होता है, दूध से हम लोगों का परपोषण होता है, मैया की तरफ वो पालन करती है। वर्षा से खेतों में अन्न होता है, इसलिए प्राणी जीवन धारण करते हैं। बिना पानी के सभी लोग मर जाएंगे, इसकी व्यवस्था इंद्र करता है, इसलिए इंद्र की पूजा। साधारण लोग यही समझते हैं कि देवता लोग अपने अपने कार्यों से कर सके हमारा किसी न किसी उपकार करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करने के लिए। कुछ तो पूजाएं हैं जो शास्त्रों में विधिवत हैं, उनको वैदिक की पूजा, सत्य की पूजा इत्यादि कही जाती है। आजकल मनमाने ढंग से अपने स्वार्थ से काम लोकता के कारण कृष्ण की पूजा एकादशी के दिन जैसा होना चाहिए विधि के अनुसार, निर्जला रहकर हरि कथा और कीर्तन के माध्यम से रात्रि का जागरण होना उचित है, ये तो शास्त्र की विधि है, सब जगह कहा है। किंतु शास्त्रों में ये कहीं नहीं कहा गया कि अपने स्वार्थों की पूजा पूर्ति के लिए चंडी जी का जागरण करें, मांस मछली अंडे खाकर, विशेष रूप से शराब का सेवन कर मदमस्त होकर के शोर हो हल्ला गुल्ला करें, किसी को सोने नहीं दे रहा, हर समाज को आसपास के लोगों को संग किया गया, ये तो कहीं नहीं लिखा। जबकि शास्त्र की पूजा इंद्र की है, उसको ही कृष्ण चुड़ा रहे हैं और उनको निर्गुणी उपासना में ला रहे हैं। कोई किसी की कामना मत करे, कृष्ण की पूजा करे और कृष्ण की भक्ति चाहे, बस यही ब्रजवासियों को होना चाहिए। हम करते तो हैं ब्रजवासी अभिमान, किंतु ये तामसिक भी नहीं, तामसिक से भी आस्तिक की ये पूजाएं हैं। आजकल मथुरा में ऐसा छा रहा है धीरे धीरे, यहां तक इनमें श्रवण करने वाले जो आए हैं, इनमें भी बहुत से ऐसे होंगे जो वहां पर भी जाते होंगे और उनका बहुत अच्छा उत्तम प्रसाद भी पाते होंगे। जो मदिरा से भी किया होगा, वहां पर जितने कीर्तन करने वाले होते हैं वो मदिरा में बम होकर बम 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 न जाने क्या क्या दुर्गे 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 चंडी चंडी करते हैं। अरे वृंदावन की चंडी तो कात्यायनी है, जिनकी उपासना की बात आप लोगों ने सुनी, उन्होंने क्या किया? गोपियों को रास में पहुंचा दिया, जो सर्वोत्तम कृष्ण की किया। इसलिए ये सब तामसिक उपासना भी आस्तिक आजकल की उपासनाएं हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, यदि कोई राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई तो उपवास करते हैं, दाढ़ी रखते हैं। अरे एकादशी के दिन उपवास करो, जन्माष्टमी के उपवास करो, और ऐसी उपासना करके कोई 40 दिन तक करता है और अंत में मर जाता है। शरीर को कष्ट दिया, आत्मा को कष्ट दिया, भगवान को भी कष्ट दिया, इसे कुछ लाभ नहीं हुई। भगवान जब अवसरित होते हैं तो ऐसी उपासनाओं को दूर कराने की चेष्टा करने के लिए उपदेश करते हैं, पिताजी से उन्होंने यही कहा। और आप लोग यदि कृष्ण की बात नहीं माने, जैसे इंद्र को उन्होंने कहा, तांत्रिक उपासनाओं को आस्तिक उपासनाओं का वर्जन करके शुद्ध रूप में नई उपासना करो। यदि नहीं मानेंगे तो क्या कृष्ण की बात मान से और नरक में जाएंगे। इसलिए तांत्रिक उपासनाओं में कीर्तनों में जागरण में नहीं जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ऐसा लोग मत करो। किंतु आज बड़े दुख की बात है, समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनको समझाए, किसी की बात ही नहीं मानेंगे। वो हमको भी निमंत्रण करते हैं, महाराज जी आपके लिए हमारा चटी जी का जागरण हो रहा है, आप थोड़ा सा चलिए। मैं राज्य में जाने के लिए तैयार हूं, किंतु बात कहूंगा अपनी, चाहे किसी को दुख लगे सुख लगे, फिर आप लोगों का मन खराब हो जाएगा। हम तो कहेंगे ऐसी उपासनाओं को छोड़ो। अरे जहां देखो कि कृष्ण अपने पिता को माता को सारे ब्रजवासियों को इंद्र की सत्य की उपासना, राजसिक और तामसिक ने सत्य की उपासना है, उसको भी छुड़वा दिया, तो ऐसे पूजाओं से दूर रहना चाहिए। कृष्ण की गोवर्धन की पूजा कराने का ही उद्देश्य। गोवर्धन है कौन?
कृष्ण गोवर्धन जी का दूध,
एक भक्त स्वरूप है और एक भगवत स्वरूप। भगवान के स्वरूप से उन्होंने कृष्ण की मूर्ति वहीं पर धारण कर, कृष्ण ने ही गोवर्धन का रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के लंबी भुजाओं से आनंद सारा ब्रजवासियों का जितना गाड़ियों का लाखों गाड़ी पकवान ठाकुर जी को भोग लगे। उन्होंने एक ऐसे लंबे लंबे हाथ उठाए और मिनटों में सारा कुछ खा गए। बोले जी और ले आओ, आनो रे आनो रे। कृष्ण ने अपने ही को अपने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। देखो आज हमारी प्रार्थना से गिरिराज गोवर्धन अपना स्वरूप धारण करके हमसे बातचीत कर रहे हैं और मांग रहे हैं। तुम्हारे भगवान बड़े मीठे इनको लग रहे हैं, ये मीठा किसको लग रहा है? किंतु करेंगे तो मांग रहे हैं। दुर्योधन का 56 प्रकार का भोग नहीं दिया, विदुर के घर में केले के छिलके से ही प्रसन्न हो गए। योगी और देव और ऋषियों की कोई भी बसन नहीं लेकर के सीधे सबरी के यहां गए और जूसी देव खाया। उनको किसी चीज की कमी नहीं, उनको प्रेम की जरूरत है। वो प्रेम को ही आरोगा करते हैं। जिस बसन में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, उसको नहीं लेते। इसलिए सारी सामाजिक और राजनीतिक यहाँ तक की सात्विक उपासनाओं को भगवान ग्रहण नहीं करते। निर्गुणी जो उपासना है उसी को ग्रहण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं लाओ ले लाओ। देखो आज हमारे ऊपर में गिरिराज जी बड़े प्रसन्न। अरे गिरिराज जी में तुम ही तो वो गिरिराज बने हुए। इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान का गिरिराज जी का दो स्वरूप, एक तो कृष्ण ही बन गए और भगवान के रूपों में कह रहे हैं तुम्हारी जो इच्छा हो वो बताओ, ये पूर्ण कर देंगे। गिरिराज अपने लिए नहीं कर रहे, अपने तो छोटे से बालक बने हुए हैं और हम जैसे मानसी गंगा में कुसुम सरोवर में भरे रहते हैं निर्मल पानी, उसमें गाय भी पानी पीती है, कृष्ण के सखा लोग उसमें पानी पीते हैं। यदि गोवर्धन नहीं रहते तो वर्षा भी नहीं होती, सूखा पड़ता। और सखाओं को खेलने के लिए तरह तरह के फल फूलों से भरा हुआ कुकुबन बना करके रखते हैं, जिसमें सखा लोग कृष्ण के साथ में खेल करते हैं। और भूख लगने पर उनके आम के फल, कटहल के फल, लीचू, बेदाना और जितने प्रकार के फल हैं उन सबों को खाते और खिलाते। सुंदर घाटों से गायों को खिलाकर उनको परिपुष्ट करते हैं। चमरी गाय का पूंछ जो आमों पर होती है कृष्ण के लिए चमर फुलाने के लिए गैरिक घाटों को उत्पन्न करते हैं, जिससे कि कृष्ण का कलेवर, गोपियों का कलेवर, उसे श्रृंगार होता है। सुंदर सुंदर पुष्प उसे सखा लोग कृष्ण को सजाते हैं। वहां पर शकर से भी अति गोपियों के लिए कृष्ण के साथ में विहार करने के लिए सुंदर सुंदर पुंज बनते हैं। ये कौन बनाता है? गिरिराज जी बनाते हैं, जिसमें हमारे प्रिया प्रियतम भी विहार करें और कोई नहीं करता। इसलिए उत्तम कोटि के भागवतों में भी ये सर्वश्रेष्ठ है, हलदार। दूसरा स्वरूप जो ये भक्त का है, ये अधिक हम लोगों के लिए उपयुक्त है। जो गोपियां जैसे भाव से उपासना की, हम लोगों को वही उपासना लेना चाहिए। गिरिराज जी को यदि भगवान समझेंगे तो भगवान की उपासना करने से वही चीज देंगे जो उनके पास में है, धन धान इत्यादि मुक्ति सधर्म सबसे प्रेमा भक्ति देते हैं। किंतु गोपियां जिस भाव से आराधना करती हैं कृष्ण की सेवा, ये नहीं दे सकते, ये कौन देंगे? कृष्ण के सेवा वो गोपियां राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन यमुना ये सब सबसे को दे सकते। इसलिए हम लोगों को गिरिराज की उपासना, यमुना जी की उपासना, राधा कुंड की उपासना केवल गोपियों के भावों के अनुसार में कृष्ण और राधा जी की सेवा करने के उपयुक्त भक्ति मानना है। यह दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए गिरिराज जी के परिक्रमा समय पत्थर पर पत्थर मत चढ़ाओ, उसे तुम्हारे 8-10 तल्ला अथवा जितना पत्थर रखोगे उतना तल्ले का घर बन जाएगा, भवन बन जाएगा। उनकी वहां के पेड़ों की डालियों में डालों में परस्पर गांठ मत दो। सिलू के पेड़ों के डालियों में पत्थर पत्थर में गांठ देते हैं, उसमें कपड़े बांध देते हैं। अतः लड़की की शादी